मेरे युवा मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग आज फिर अर्थशास्त्र के एक प्रश्न पर बात करेंगे, जितना भी वक्त होगा उसको देखते हुए। लेकिन पहले दो खबरें मैं आपके सामने विशेष रूप से रखना चाहूंगा। यूक्रेन के मामले को आप सब बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अब जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उसमें आप एक थोड़ा सा बदलाव देख रहे होंगे कि अब के आर्टिकल्स में अब इस तरह की बातें की जाने लगी हैं कि अगर यह मामला बढ़ता गया और कहीं इसने युद्ध का रूप ले लिया तो भारत पर उसका प्रभाव क्या होगा। और सीधी सी बात है कि भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भारत अभी एक तरह से तटस्थ देशों में शामिल है, कल इसकी चर्चा मैंने की थी। उसकी तटस्थता का कारण यही है कि वह क्या करे, क्योंकि रूस भी उसका मित्र है और अमेरिका भी उसका मित्र है। ऐसी स्थिति में वो किसका पक्ष ले, उसके सामने ये धर्म संकट है। लेकिन क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं आगे चल करके, उस पर अब लेख लिखे जाने लगे हैं और मैं समझता हूं कि अब यही वह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बिंदु है जिसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा या पड़ सकता है। बहुत स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में इसके बिंदु मौजूद रहने चाहिए, बहुत स्पष्ट रूप से, कोई भी उसमें भटकाव या अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। पहली बात, जब आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे तो भारत ने तटस्थता का सिद्धांत इसमें अपनाया हुआ है। इसने ये जरूर कहा है कि भाई आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल होना चाहिए। क्यों साथ नहीं दे पा रहा है वो रशिया का, क्यों साथ नहीं दे पा रहा है अमेरिका का, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं और यहां से आपका स्ट्रक्चर जो इसका आंसर का बनेगा उसकी शुरुआत होगी। अब आप देखिए कि मामला किन किन रूपों में आगे बढ़ सकता है। नो डाउट आप देख रहे हैं कि तेल की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, मुद्रा स्फीति पर पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर आप ये भी जानते होंगे, अगर नहीं तो अब आर्टिकल्स में आने लगे हैं कि हमारा जो 60% जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो रशिया पूरा करता है, 60%, तो उसके उसमें बाधा आ सकती है। यहां तक कि जो रशिया है उसने हमें अभी S-400 मिसाइल्स दी हैं, इस पर हम लोगों ने बात की थी, मेंस में इस पर पूछा भी गया है, S-400 मिसाइल्स इसका नाम है। अब अगर ये युद्ध छिड़ गया तो इसके जो इक्विपमेंट हैं वो रशिया से मिलने हैं, वो हमें इक्विपमेंट नहीं मिल पाएंगे। और अगर अमेरिका थोड़ा सा नाराज हो जाता है इस बात को लेकर के कि भारत हमारा पक्ष नहीं ले रहा है तो हो सकता है कि वो भारत पर और दबाव डाले, कुछ और प्रतिबंध लगाए। अभी उसने नाराजगी तो व्यक्त कर दी है, इतना ही तक है, लेकिन हो सकता है कि बात और आगे बढ़ जाए, वहां भी एक संकट की स्थिति आ सकती है। दोस्तों, फिर ऐसा नहीं है कि हमारा रशिया के साथ ही व्यापार है, दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी व्यापार है, वो ऑटोमेटिक तरीके से बाधित होगी। जैसे कि भारत में चाय एक बड़ा उद्योग है और भारत का जो चाय उद्योग है वो थोड़े से संकट के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि हमारी जो चाय है वो थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, हम विश्व बाजार में उसकी कीमतों की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लागतें ज्यादा हैं और हम जितना भी चाय का निर्यात करते हैं वो 18% रूस को करते हैं। ये तथ्य आपके दिमाग में साफ होने चाहिए, तब आप देखिए कि जब आंसर लिखेंगे तो कितना परफेक्ट आंसर आपका बनेगा। रूस ये चाय मंगाना बंद कर सकता है तो हमारा जो उद्योग पहले से ही जूझ रहा है, चाय उद्योग, संकट से और ज्यादा संकट उस पर आ जाएगा। इसके साथ ही साथ पूरा यूरोप इन्वॉल्व है और यूरोप को हम बकायदे इंजीनियरिंग सामान और औषधि वगैरह भेजते हैं, तो यह निर्यात भी हमारा पूरी तरह से आप यूं कह लीजिए कि दबाव में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था पर देखिए कि क्या क्या असर पड़ेगा। फिर यह भी हो सकता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो अमेरिका है, चूंकि अब यूक्रेन की तरफ उसका ध्यान ज्यादा है तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसकी प्राथमिकता में कम हो जाएगा। और अगर अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान देना कम किया तो भारत के लिए एक अलग तरह की चुनौती तैयार हो जाएगी, क्योंकि चीन तो अपने ध्यान को हटाएगा नहीं। तो इस तरीके से जो पॉइंट्स आपको पढ़ने को मिले आर्टिकल्स में या एडिटोरियल कमेंट्स में, तो प्लीज आप बकायदे उन्हें नोट करते जाएं ताकि एक अच्छा आंसर आपका तैयार हो जाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो चेतन भगत जी का है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारे न्यायिक व्यवस्था में किस किस तरह के सुधार किए जाने की जरूरत है। इसमें इन्होंने 5 तरह के सुधारों की बात की है। पहला तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे जो न्यायपालिका है उसके लिए जो बजट आवंटन किया जाता है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, न्यायपालिका के पास बहुत कमी है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अदालत के जो भवन वगैरह हैं और वो बनाए जाने चाहिए क्योंकि काफी कमी है, और उन्होंने वर्चुअल कोर्ट की भी बात कही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना पीरियड में वर्चुअल सुनवाई होने लगी है, है ना। आप घर में बैठे रहिए लेकिन बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं बाहर से कनेक्ट होकर के। तो उन्होंने कहा है कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई क्यों नहीं हो सकती, यह भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है, देखिए सबसे बड़ा संकट क्या है, वो काम के बोझ से दबी हुई है। एक छोटा सा भी केस होता है 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं, और उन्होंने बताया है कि इसकी वजह से जो विदेशी निवेशक हैं वो भारत में आने से बहुत हिचकिचाते हैं। उनको मालूम है कि हम वहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, उद्योग लगाएंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मामले तो कोर्ट में पहुंच जाएंगे, और अगर कोर्ट में पहुंच जाएंगे तो पता लगा कि 5-10 साल तक वो घसीटे रह रहे हैं, क्योंकि तुरंत तो न्याय मिलेगा नहीं, तो इससे भी उनमें हिचक है। तो जब आप वर्चुअल कोर्ट जैसी स्थिति ले आएंगे तो डेफिनेटली सुनवाई थोड़ी सी जल्दी हो सकेगी। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि भर्तियां बढ़ाई जानी चाहिए, हमारे पास जजेस बहुत कम हैं, और फिर उनके लिए जो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए वो भी बहुत कम, उनकी भी आपको भर्ती करनी पड़ेगी। तो आप जजेस की नौकरी देंगे, उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, उनके लिए नौकरी देंगे, और अभी रोजगार के संकट से हम गुजर ही रहे हैं, तो यह भी किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात कही, मुझे लगता है कि इसके बारे में आप सबको जानकारी कम होगी, एक है VFS सर्विसेज। VFS सर्विसेज का मतलब है, वी का मतलब है यहाँ वीजा, विदेशों में जाने के लिए जो दूसरे देशों से आपको वीजा लेना पड़ता है, वीजा फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन मतलब उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराना, उसको आगे बढ़ाना, फैसिलिटेशन सर्विसेज, VFS वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज। ये खासकर अभी जो वीजा वगैरह हैं उनके लिए इस सर्विसेज का उपयोग किया जाता है। इसमें होता यह है कि इस सर्विसेज के तहत जैसे आपसे कागजात मांगे जाएंगे ना कि वीजा आपको लेना है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए फलाना फलाना, तो इस सर्विसेज के तहत वो पूरे आपके इस तरह के जो काम होते हैं वो सब वो कर देता है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है, और फिर वो बता देता है कि इसमें ये कमी है, आप इस डेट तक पूरा कर दीजिए, आपका काम यहाँ तक पहुँच गया, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड तरीके से होने लगती है। पासपोर्ट में भी ये किया जाने लगा है, भारत में अगर आप पासपोर्ट बनाने जाइए तो इस तरह की सुविधाएं आपको मिलेंगी, खासकर वीज़ा अप्लाई करते समय तो इसका बहुत ही उपयोग होता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो उपयोग है हम न्यायालय में क्यों नहीं लागू कर सकते, क्योंकि वहां देखते हैं ना आप कागज पत्र इकट्ठा करना, वो करना, सब बताना, इनकी बहुत ज़रूरत होती है, उसमें हमारा समय बच सकेगा। और पांचवी बात उन्होंने ये कही कि सुनवाई होती है फिर तारीख पर तारीख मिलती जाती है, फिर सुनवाई नहीं होती है, तो बोले इसके लिए बड़े आराम से व्हाट्सअप हैं, फ़ोन हैं, टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इन सब का उपयोग किया जा सकता है, तो इससे लोगों का पैसा भी बचेगा, परेशानी भी बचेगी, धन भी कम खर्च होगा, और सीधी सी बात है न्याय भी जल्दी मिल सकेगा। तो इन्होंने ये 5 उपाय सुझाए हैं, और मुझे लगता है कि ये 5 उपाय अलग से 5 पॉइंट्स के रूप में अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके पास बहुत ही ठोस तथ्य न्यायालय से संबंधित हो जाएंगे। दोस्तों अब मुख्य विषय के तहत मैं आपके सामने अर्थशास्त्र का एक प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं जो बी सेट में क्वेश्चन नंबर 25 है। अब आप इसे ध्यान से सुनिए। भारत में अंतिम उधारदाता को सिंगल इन्वर्टेड में दिया हुआ है, जिसका इंग्लिश वर्जन भी दिया है हिंदी में ही, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतया निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दूसरा स्टेटमेंट है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। तीसरा है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। और फिर नीचे दिया हुआ है कि दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ABCD है, 1, 2, केवल 2, 2 और 3, केवल 3, इस तरह से वो कूट दिए हुए हैं, तो कूट की चर्चा करना यहां मैं जरूरी नहीं समझता। हिंदी में जो शब्द यहां उपयोग किए गए हैं हो सकता है कि थोड़ी सी आपको कठिनाई महसूस हो रही हो, तो मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुने। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट यूजुअली रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स। नंबर 1, lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources. Second statement, providing liquidity to the banks having a temporary crisis. Third statement, lending to governments to finance budgetary deficit. इसके बाद वो कोट दिया हुआ है। यहां भी मैं जो आपसे बात करूंगा वो इस रूप में करूंगा कि आपने अर्थशास्त्र की तैयारी नहीं की है, बस एक बहुत ही सिंपल सी जानकारी आपको है। देखिए, अगर तैयारी नहीं की है इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगी। लेकिन यह है कि आप बहुत अच्छे से आपकी तैयारी नहीं है, या यूं कह लीजिए कि इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है और आपको सॉल्व करना है। आपको ध्यान होगा कि जब मैं अर्थशास्त्र के प्रश्नों की शुरुआत कर रहा था तो एक बात मैंने आप सबसे कही थी, और वो ये कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है शुरू में आपको बड़े जटिल से लगेंगे। यदि आप अपना धैर्य बनाए नहीं रख सके पढ़ने के दौरान, तो मान करके चलिए कि आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा कि ये क्या है। हिंदी में तो समझ में आएगा ही नहीं, इंग्लिश में तो फिर भी शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है कि जो इसकी पहली शर्त होती है वो यह कि आप बहुत इत्मीनान के साथ इसे पढ़ें और ये मान करके पढ़ें कि नहीं, मैं इसे समझूंगा और अच्छे तरीके से समझ लूंगा। तो पहला काम तो आप यही करें। मैंने आपको सुनाया है, आपने सुन लिया है, और सुनने के बाद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बेचैनी हुई हो कि नहीं नहीं यार, ये क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। तो आप ये एक्सरसाइज अपने ही लेवल पर करें, इत्मीनान के साथ इसे पढ़ें, समझने की कोशिश करें प्रश्न को भी और जो तीन विकल्प दिए गए हैं इनको भी। फिर हम लोग इस पर कल बातें करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं, जय कुमार गढ़वी गुजरात से, आशुतोष शर्मा मुरैना मध्य प्रदेश से, और अनीस अहमद अमेठी उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।